हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य सिंघानिया और अमृता को मुंबई आए हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में उन्होंने अपनी कंपनी की इंडिया में भी ब्रांच ओपनिंग की पूरी तैयारी कर ली थी। 3 दिनों में ही अमृता ने आदित्य सिंघानिया के पुराने ऑफिस को रेनोवेट करवा दिया था। पूरे मार्केट में ये खबर फैल गई थी कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज मुंबई में फिर से शुरू होने वाली है और कल शाम उसी की ग्रैंड पार्टी रखी जा रही थी। आदित्य और अमृता डाइनिंग टेबल पर थे, तभी अर्जुन व्हीलचेयर पर रोहान को लेकर आया। रोहान के एक्सीडेंट के बाद आज सुबह ही उसे डिस्चार्ज मिला था, तो अर्जुन उसे अपने घर ही ले आया। रोहान को वहां देखकर आदित्य सिंघानिया ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने पहले रोहान को चेयर पर सेटल किया और फिर उसके पास बैठकर आदित्य सिंघानिया की तरफ देखकर कहा, काफी कम टाइम में आपने बहुत कुछ कर लिया है दादू, मुझे बोल लेते तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता। आदित्य सिंघानिया ने आईज रोल करके जवाब में कहा, तुम्हें फुर्सत है किसी की बेबी सिटिंग करने से जो तुम हमारी हेल्प करोगे? खैर छोड़ो, अब क्या कल पार्टी में भी इसे अपने साथ लेकर घूमोगे? बोलते हुए उन्होंने रोहान को अजीब नजरों से देखा। ऑफकोर्स, ये मेरा दोस्त है तो मैं इसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। कल पार्टी में इसके डैड भी आएंगे तो ये उनसे भी मिल लेगा। वैसे भी इसकी ये हालत युग राणा नहीं की है, इसकी कोई गलती नहीं है, अर्जुन ने कहा। उसे युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन की बात सुनकर अमृता के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसने उसी लहजे में कहा, हमारे काम में ये सब चलता रहता है, तुम दोनों के लिए ये सब नया होगा, पर हमें इससे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है और हैरानी तब भी नहीं होगी जब कभी युभ तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर दे तो। आप मुझे धमकी दे रही हैं अमू, अर्जुन ने तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। इसे धमकी नहीं, वार्निंग कहते हैं बेटा, अमृता के बजाय आदित्य सिंघानिया ने जवाब दिया। फिर उन्होंने रोहान की तरफ देखकर कहा, कल तुम खास युग से बचकर रहना, क्या पता तुम्हें व्हीलचेयर से धक्का दे दे और फिर जो थोड़ी बहुत हड्डियां बची हैं वो भी टूट जाएं। आदित्य सिंघानिया जिस तरह से रोहान से बात कर रहे थे उससे साफ समझ आ रहा था कि वो उसे पार्टी से दूर रहने के बारे में कह रहे थे। उनकी बातें सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, समझ नहीं आता आप लोग युग से नफरत करते हैं या उसका फेवर कर रहे हैं, खुलेआम एक शरीफ इंसान को धमका रहे हैं, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। उन सब की बातों के बीच रोहान ने अचानक पूछा, कल पार्टी में युग आएगा तो कृषा भी उसके साथ आएगी ना? रोहान के सवाल पर वो तीनों उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन को हैरानी हो रही थी तो वहीं अमृता और आदित्य की निगाहें सर्द थीं। वो दोनों युग को पसंद नहीं करते थे, इसका मतलब ये भी नहीं था कि कृषा की शादी किसी ऐरे गैरे के साथ कर देते। आदित्य जी ने रोहान की तरफ तीखी निगाहों से देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, आगे से तुम्हारे मुंह पर कृषा का नाम नहीं होना चाहिए, वरना जो हड्डियां युग ने बाकी छोड़ी हैं वो मैं तोड़ दूंगा। आदित्य सिंघानिया जिस तरह से रोहान से बात कर रहे थे उससे साफ समझ आ रहा था कि वो उसे पार्टी से दूर रहने के बारे में कह रहे थे। उनकी बातें सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, समझ नहीं आता आप लोग युग से नफरत करते हैं या उसका फेवर कर रहे हैं, खुलेआम एक शरीफ इंसान को धमका रहे हैं, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। उन सब की बातों के बीच रुहान ने अचानक पूछा, कल पार्टी में युग आएगा तो कृषा भी उसके साथ आएगी ना? रुहान के सवाल पर वो तीनों उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन को हैरानी हो रही थी तो वहीं अमृता और आदित्य की निगाहें सर्द थीं। वो दोनों युग को पसंद नहीं करते थे, इसका मतलब ये भी नहीं था कि कृषा की शादी किसी ऐरे गैरे के साथ कर देते। आदित्य जी ने रुहान की तरफ तीखी निगाहों से देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, आगे से तुम्हारे मुंह पर कृषा का नाम नहीं होना चाहिए, वरना जो हड्डियां युग ने बाकी छोड़ी हैं वो मैं तोड़ दूंगा। अर्जुन आदित्य सिंघानिया को जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। अर्जुन को इस बात का डर था कि कहीं रोहान उनके सामने इस बात का खुलासा न कर दे कि पेपर्स के हिसाब से उसकी और कृषा की शादी हो चुकी है। बातचीत का रुख बदलने के लिए अर्जुन ने जल्दी से कहा, वैसे क्या गारंटी है कि कल कृषा पार्टी में आएगी या युग भी उसके साथ होगा? युग अपने दुश्मनों के बीच कभी नहीं आएगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि कृषा हम सबसे मिले। हमने उन्हें इनवाइट किया है और वो जरूर आएंगे। वैसे सारा की किसी से बात हुई, वो कहाँ है आजकल? अमृता ने अर्जुन की तरफ देखकर पूछा। उसने कृषा के साथ साथ सारा की जिम्मेदारी भी अर्जुन पर छोड़ी थी। वो कृषा के साथ राणा मेंशन में ही है, मेरी उससे बात हुई थी, अर्जुन ने जवाब दिया। उन सबसे अलग रुहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो भले ही चुप बैठा हो, लेकिन उसे अच्छे से समझ आ रहा था जिस तरह से आदित्य सिंघानिया और अमृता बातों ही बातों में उसकी इंसल्ट कर रहे थे। रुहान के हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसने अपने मन में कहा, बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद तुम सबको अपनी अपनी औकात पता चल जाएगी। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे और कृषा के उन पेपर्स पर साइन करवाकर। कोर्ट रूम में सब साबित होते ही मैं कृषा को यहाँ ले जाऊंगा और फिर माफिया किंग मैं बनूंगा और कृषा का लाइफ पार्टनर भी। उस वक्त मैं तुम सबको अपनी अपनी औकात अच्छे से याद दिलाऊंगा, खासकर उस युग राणा को। दुनिया का कोई भी वकील इस केस को नहीं जिता पाएगा। कुछ ही देर में उनका डिनर खत्म हो गया था तो सब अपने अपने रूम में चले गए थे। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। युग अपने बिस्तर से उठा और बाहर आया। उसे मुंबई आए हुए काफी टाइम हो चुका था, फिर भी उसने एक बार ना तो कृषा से बात की और ना ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए कृषा को देखा था। युग अपने ही कामों में उलझा था क्योंकि यहाँ से उसे कृषा को लेकर सीधे दूसरे पड़ाव पर जाना था। सुबह कॉफी के साथ ही मलिक और युग दूसरे पड़ाव के बारे में ही बातें कर रहे थे। मलिक ने टेबल पर एक मैप खोल रखा था। उसने एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहा, चीन को सबसे छोटा विलेज ताइयान, जहाँ की पॉपुलेशन भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर एक टेम्पल बनाया हुआ है। टेम्पल में जाने की परमिशन हर किसी को नहीं है। वहाँ के ट्राइब्स ने ऑलरेडी टेम्पल की काफ़ी टाइट सिक्योरिटी कर रखी है। एक बार के लिए हम आदित्य सिंघानिया के ह्यूमन सिक्योरिटी सर्कल को तोड़कर टेम्पल में जा भी सकते हैं, पर ट्राइब्स के लोग हमें आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। वहाँ से भी अंदर चले गए तो टेम्पल में जहाँ भगवान की मूर्ति रखी हुई है उसे हटाना होगा, जो वो हमें कभी नहीं करने देंगे, और उसके बाद ही हम दूसरे पड़ाव तक पहुँच पाएंगे। ये सब बहुत मुश्किल है और हमें इसके लिए शार्प और क्विक रहना होगा। क्या आप फिर भी मैम के साथ के लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? युग ने कुछ देर मैप की तरफ देखा। उसने मलिक को लगभग एक दिन पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन जुटाने के बारे में कहा था। उन्होंने डेजर्ट एरिया से जो सातों पड़ाव के मैप निकाले थे, वो बस उन सभी पड़ावों की लोकेशन थी, बाकी उसमें कोई छोटी जानकारी नहीं दी हुई थी। मलिक के हर छोटी डिटेल निकालने पर युग उससे काफी इम्प्रेस हुआ। युग ने मलिक की तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, हर बार की तरह काम काफी अच्छा किया है तुमने, लेकिन पहली बार तुम्हारी आंखों में डर देख रहा हूँ। इतना डर तो मेरे दिल में भी कृष को लेकर नहीं है जितना तुम घबरा रहे हो। कहीं प्याल तो नहीं हो गया उससे? बोलते हुए युग की निगाहें सर्द हो गईं। उसके इस अचानक पूछे गए सवाल से मलिक भी हड़बड़ा गया। वो झट से जवाब में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने महसूस किया है कि आप उन्हें पसंद करने लगे हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, और आपको कुछ हुआ तो? बोलते हुए मलिक रुक गया। युग ने मलिक की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे कुछ हो गया तो? मलिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो? आई टेल यू, मैं प्यार करने के लायक इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मलिक समझ गया था युग उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है, क्योंकि पिछले दो दिनों से वो युग की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था। कृषा के जाने के बाद बार बार उसे खाने के लिए फोर्स करना और अब दूसरे पड़ाव पर जाने से रोकना। आप जानते हो कि बहस करने के मामले में मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं क्या कोई भी नहीं जीत पाएगा? अब आपने जाने का सोच ही लिया है तो मुझे इसकी तैयारी करने का थोड़ा टाइम दीजिए, मलिक ने बात को बदलते हुए कहा।
युग ने हाँ में सिर हिलाया और काफी सीरियस टोन में कहा, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे का टाइम है मलिक। उसके बाद मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। और ये बात याद रखना कि अगर मैंने 24 घंटे का टाइम दिया है तो मैं अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगा। कृष के बिना हम अगले पड़ाव पर नहीं जा पाएंगे, तो तय है कि वो भी हमारे साथ रहेगी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे पड़ाव का खजाना हासिल करते हैं। मुझे टेम्पल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मैं उसे तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाऊंगा। दूसरे पड़ाव पर पहुंचने के बाद भगवान की मूर्ति वापस उसी जगह पर रख दी जाएगी। मुझे किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करने का शौक नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे टेम्पल की एक ईंट भी टूटे। पहले ही सबको समझा देना, किसी ने टेम्पल को एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो हमारा आदमी ही क्यों ना हो। युग ने मलिक को सब समझा दिया था और अपनी तरफ से फाइनल ऑर्डर भी दे दिया था। उसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने बिना मलिक की तरफ देखे तेज आवाज में कहा, शाम को पार्टी में पहनने के लिए ब्लैक सूट चाहिए मुझे। बुआ को कॉल करके बोल देना कि मुझे क्रिस्पी ब्लैक ड्रेस में चाहिए। लेकिन सर, पार्टी की थीम बॉटल ग्रीन है, मलिक ने जवाब में कहा। युग ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। इससे वो भी समझ गया था कि युग किसी की नहीं सुनने वाला है। उसे ब्लैक पहनना है तो वो ब्लैक में ही जाएगा। अंडर द नाइट, शाम के लगभग 6 बज रहे थे और राणा मैंशन में पार्टी में जाने के लिए हर कोई तैयार हो रहा था। पहली बार सिंघानिया फैमिली की तरफ से राणा फैमिली को इनविटेशन मिला था। सब थीम के अकॉर्डिंग ही तैयार हो रहे थे, लेकिन मलिक के कॉल करने पर मजबूरन हरलीन को कृषा के लिए ब्लैक ड्रेस ही सिलेक्ट करनी पड़ी। कृषा हैरानी से हरलीन की तरफ देख रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, आपको नहीं लगता कि मैं आप सबके बीच वहाँ एलियन जैसी नजर आऊंगी? सब एक जैसे कलर के कपड़े पहनकर कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, फिर मुझे अलग कपड़े क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि तुम खास हो, अब सब जान गए हैं कि तुम ही माफिया प्रिंसेस हो, तो तुम्हें सबसे अलग दिखना है, हरलीन ने जवाब दिया। वो नहीं चाहती थी कि कृषा इस बारे में और ज्यादा सवाल पूछे। युग ने कृषा को बताने से मना किया था कि वो मुंबई में है, और कृषा के इतने सवाल पूछने पर हरलीन के लिए बताना मुश्किल हो जाता कि ये सब युग के कहने पर हो रहा है। कृषा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां रखी मैनिक्वीन की तरफ देखा। उन पर ब्लैक कलर के 4 अलग अलग डिजाइन के गाउन रखे हुए थे। सब के सब काफी खूबसूरत और मॉडर्न तरीके से डिजाइन किए हुए थे। कृषा ने उनकी तरफ अजीब नजरों से देखा और मुंह बनाते हुए कहा, साड़ी? आई वियर साड़ी? मैंने डिजाइनर को कॉल किया तो उसे लेकर आने में 2 घंटे और लग जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे कलेक्शन से कुछ देख लो, मैंने 3 दिन पहले ही अपडेट करवाया है, हरलीन ने कहा। वो भी पार्टी जैसे मौके पर अक्सर साड़ी ही पहनना पसंद करती थी। आज भी उसने बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था। कृषा हरलीन के साथ उसके वार्डरोब में गई। उसने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी सिलेक्ट की जिसके साथ लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज था और नेक ऊपर से बंद था। मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगी, कहकर कृषा साड़ी के साथ अपने कमरे में चली गई। वो कुछ खास एफर्ट्स नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद तैयार होने के लिए कहा। वहीं युग पार्टी वेन्यू के बाहर खड़ा कृषा के आने का वेट कर रहा था। उसे कृषा के साथ ही पार्टी में एंट्री लेनी थी। अंडर द नाइट, शाम के लगभग 6 बज रहे थे और राणा मैंशन में पार्टी में जाने के लिए हर कोई तैयार हो रहा था।